पृष्ठ संख्या 195, शीर्षक है बिंदु ख, अनुभव मूलक तर्क। परंपरा मूलक तर्क द्वारा बाह्य जगत को दृष्टि में रखकर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, परंतु अनुभव पर आधारित तर्कों का मूल्य इससे भिन्न होता है। आज के वैज्ञानिक युग में इन तर्कों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इन तर्कों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्कों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे नैतिक, ऐतिहासिक, फलवादी, मूल्यात्मक एवं धार्मिक। अब अगला शीर्षक है, पहला नैतिक तर्क, मोरल आर्गुमेंट। परिचय एवं परिभाषा। गैलवे के अनुसार नैतिक तर्क यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर के अस्तित्व में नैतिक जीवन की समस्याओं का अत्युत्तम समाधान मिलता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम कांट ने ही इस तर्क को प्रस्तावित किया था। न्यूमैन, सोले, मार्टिनो, रैशडेल और समकालीन विचारकों में जॉन बेली, डी एम बेली तथा एच जे पेटन ने भी इस तर्क को ग्रहण किया है। यहाँ हम संक्षेप में कांट, मार्टिनो तथा रैशडेल के तर्कों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। बिंदु अ है कांट का नीति विषयक तर्क। कांट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिए गए परंपरा मूलक तर्कों के कटु आलोचक रहे हैं, परंतु नैतिक तर्क के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। उनके मत में परंपरा मूलक तर्क बाह्य जगत के आधार पर दिए गए हैं। इन तर्कों का उतना महत्व नहीं है जितना कि नैतिक अनुभूति का। पृष्ठ संख्या 196। नैतिकता का संबंध मानव जीवन की आंतरिकता से है। कांट ईश्वर की अनुभूति से तब अभिभूत होते हैं जब सिर पर तारों भरा आकाश देखते हैं और हृदय पटल पर लिखे गए नैतिक आदेश पर ध्यान देते हैं। सारांश यह है कि कांट मानव के अंतःकरण में नैतिक बाध्यता को स्वीकार करते हैं। गैलवे कांट के नैतिक प्रमाण की पृष्ठभूमि इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। कांट का कहना है कि नैतिक आत्मा की यह मांग होती है कि वह सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करे, परंतु सर्वोच्च शुभ में दो तत्व वर्तमान हैं, धर्म और सुख। धर्म का अर्थ है कर्तव्य पूर्ति की चेतना और सुख का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। कांट का कहना है कि धर्म और सुख दो भिन्न जगत से संबंधित हैं। धर्म का संबंध पारमार्थिक जगत से है और सुख का संबंध व्यवहारिक जगत से। सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के लिए इन दोनों विपरीत तत्वों का मिलन आवश्यक है, परंतु यह कैसे संभव हो यह एक समस्या है। दोनों जगतों के आधार के रूप में ईश्वर को मानकर कांट इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ईश्वर धर्म और सुख के एकीकरण की जिम्मेदारी लेता है और सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होती है। कांट ईश्वर का अस्तित्व नैतिकता के लिए एक दूसरे आधार पर आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि नैतिकता की यह मूल मान्यता है कि शुभ और नैतिक कार्य करने वाला सुखी होगा और अशुभ तथा अनैतिक कार्य करने वाला व्यक्ति दुखी होगा। परंतु बहुधा देखने में यह आता है कि नैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है और पापी तथा दुराचारी सुखी रहते हैं। चूँकि नैतिकता का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें यह मानना पड़ता है कि वर्तमान जन्म ही सब कुछ नहीं है, अगला जन्म भी है। नैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति को सुख प्रदान करने के लिए ईश्वर जैसी चेतन सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। ईश्वर ही पापी को दंड और धार्मिक व्यक्ति को वर्तमान और अगले जन्म में भी सुख प्रदान करता है। बिंदु ब है मार्टिनो का नैतिक तर्क। नैतिक आदर्श की सत्यता के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। मार्टिनो का कहना है कि नैतिक आदर्श का अर्थ है आत्मा की पूर्णता। पहले तो नैतिक आदर्श को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर नैतिकता की प्राप्ति के लिए एक आग्रह और बाध्यता है। यदि यह नैतिक आदर्श झूठा है तो नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं होता। चूँकि मानव नैतिक आदर्श को झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, अतः ईश्वर इस आदर्श का प्रतीक है। बिंदु स है रैशडेल का नैतिक तर्क। निरपेक्ष नैतिकता की व्याख्या ईश्वर से ही संभव है। रैशडेल नैतिक अनुभूति को स्वतंत्र और निरपेक्ष मानते हैं और उसी के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार प्रकृतिवाद और जड़वाद नैतिक आदर्शों की व्याख्या नहीं कर सकते। यदि नैतिक आदर्श सार्वभौम, निरपेक्ष और स्वतंत्र है तो वह पूर्ण निरपेक्ष बुद्धि में ही संभव है। यही नैतिकता का स्रोत और आधार है। निरपेक्ष और पूर्ण बुद्धि को ही धर्म के क्षेत्र में ईश्वर कहा जाता है। अतः नैतिकता से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। पृष्ठ संख्या 197। शीर्षक है नैतिक तर्क की आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, क्या ईश्वर धर्म और सुख में एकता स्थापित कर सकता है? कांट पारमार्थिक और व्यवहारिक जगत तथा धर्म और सुख ऐसे दो विपरीत तत्वों को मानकर ईश्वर द्वारा इनमें एकता स्थापित करना चाहते हैं, परंतु यह संभव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ईश्वर में तो सुख का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि सुख वासनाओं की तृप्ति से ही संभव होता है और ईश्वर में वासनाएं हो नहीं सकती। अतः सुख से दूर रहने वाला ईश्वर धर्म और सुख में कैसे एकता स्थापित कर सकता है? कांट का यह समन्वय कृत्रिम मालूम होता है। दूसरा बिंदु है, कांट का नैतिक तर्क निर्दोष नहीं है। कांट का नैतिक सिद्धांत उनकी दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित है, जो दोष रहित नहीं कहे जा सकते, इसलिए उनका नैतिक तर्क भी निर्दोष नहीं है। बिंदु तीसरा है, ईश्वर साध्य है न कि साधन। कांट के अपने नैतिक तर्क में ईश्वर को नैतिकता का साधन माना है और नैतिकता को साध्य। धर्म की दृष्टि से यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। धर्म में ईश्वर को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है और नैतिकता को गौण माना जाता है। व्यक्ति नैतिक इसलिए होता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो, परंतु कांट ने तो ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार किया है कि इससे परम शुभ की प्राप्ति होती है। बिंदु चौथा है, नैतिक व्यक्ति सुखी होगा। यह कोई स्वयं सिद्ध सिद्धांत नहीं है। कांट का नैतिक तर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि नैतिक व्यक्ति सुखी होगा। कांट ने इस सिद्धांत को इस रूप में स्वीकार किया है जैसे यह कोई स्वयं सिद्ध सिद्धांत हो, परंतु अनेक दार्शनिकों की दृष्टि में इसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। अतः जब तक आधार ही सिद्ध नहीं होगा, तब तक निष्कर्ष का कोई महत्व ही नहीं हो सकता। बिंदु पांचवा है, मार्टिनो द्वारा प्रतिपादित आत्मा की पूर्णता नैतिक आदर्श है, मान्य नहीं है। जैसे कांट नैतिक व्यक्ति सुखी होगा स्वयं सिद्ध सिद्धांत के रूप में मानकर चलते हैं, वैसे ही मार्टिनो आत्मा की पूर्णता नैतिक आदर्श है, स्वयं सिद्ध सिद्धांत के रूप में मानते हैं। परंतु बहुत से विचारक मार्टिनो की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में इस तर्क का कोई महत्व नहीं है। बिंदु छठवां है, यदि निरपेक्ष परम सत्ता से ही सही घटनाएं नियंत्रित हैं तो संकल्प स्वातंत्र कहाँ? रैशडेल के अनुसार निरपेक्ष परम सत्ता से ही सभी घटनाएं घटित होती हैं। यदि यह सत्य है तो मानवीय क्रियाएं भी उसी से संचालित होगी। फिर तो मनुष्य की संकल्प शक्ति निरपेक्ष सत्ता के अधीन कही जाएगी, जिसका परिणाम नियतिवाद होगा। जब मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता नहीं होगी तो नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं होगा। बिंदु सातवां है, नैतिक आदर्श यदि वस्तुनिष्ठ है तो आदर्श नहीं। रैशडेल वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के आधार पर नैतिकता को वस्तुनिष्ठ मानते हैं, परंतु आदर्श कभी यथार्थ नहीं हो सकता। यदि आदर्श को यथार्थ माना जाएगा तो आदर्श तथा यथार्थ में अंतर ही क्या हो सकता है? बिंदु आठवां है, नैतिकता ईश्वर पर आधारित नहीं। कुछ विचारकों के अनुसार नैतिकता के लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि नैतिक आदर्श तो श्रद्धा पर अवलंबित है। व्यक्ति नैतिक आदर्शों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और इसलिए उसका पालन करता है। अतः नैतिकता ईश्वर पर आधारित नहीं है। पृष्ठ संख्या 198। शीर्षक है। बिंदु दूसरा, ऐतिहासिक तर्क, इसके अंतर्गत शीर्षक है ऐतिहासिक घटना में दैवी प्रयोजन। गैलवे के शब्दों में ऐतिहासिक प्रमाण वास्तव में एक प्रमाण न होकर एक सुझाव है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मानव मस्तिष्क में व्याप्त ईश्वरीय चेतना का पर्याप्त कारण ईश्वर स्वयं है। यह तर्क नैतिक तर्क से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। जिस प्रकार नैतिक तर्क से यह सिद्ध किया जाता है कि नैतिक चेतना ईश्वर के अस्तित्व से ही संभव है, उसी प्रकार ऐतिहासिक तर्क भी यह सिद्ध करता है कि प्रारंभ से ही मानव जात के विकास की समस्त क्रियाएं तथा इतिहास में घटित परिवर्तन किसी दैवी शक्ति पर ही निर्भर है। मानव विकास में अद्भुत दैवी प्रयोजन सन्निहित है। मानव जात की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लंबी यात्रा, जिसमें आध्यात्मिक ईश्वर की चेतना मानव मस्तिष्क में घर करती गई, निरर्थक हो जाता यदि वास्तविक रूप में किसी सत्ता का अस्तित्व न होता। सारांश में कहा जा सकता है कि इतिहास पर दृष्टिपात करने से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। धर्म के इतिहास से भी यही बात चरितार्थ होती है। इसीलिए धर्म प्राचीन और नवीन का समन्वय करता है। धर्म के प्राचीनतम रूप को भी विकसित धर्म में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक तर्क ईश्वर की सिद्धि के लिए जिस प्रकार नैतिक तर्क से मिलता जुलता है, उसी प्रकार इसका संबंध प्रयोजनवादी तर्क से भी देखा जाता है। प्रयोजनवादी तर्क में व्यवस्थापक और प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। ऐतिहासिक तर्क में घटनाओं और परिवर्तनों के पीछे दैवी प्रयोजन देखा जाता है और उसी के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। अगला शीर्षक है आलोचना। ऐतिहासिक तर्क के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्षेप यह होता है कि इतिहास में ऐसे विभत्स कांड देखे जाते हैं जिन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे कोई दैवी प्रयोजन निहित है, क्योंकि ईश्वर जैसी सत्ता इस प्रकार के कुत्सित कांड और अत्याचार नहीं कर सकती। अब अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा, फलवादी तर्क, द प्रैग्मेटिक आर्गुमेंट। ईश्वर विश्वास पर निर्भर है और ईश्वर में विश्वास जीवन में उपयोगी है। फलवादी दर्शन व्यवहार और अनुभव में आए हुए तथ्यों को ही अधिक महत्व देता है। यहाँ हम विलियम जेम्स के मत के आधार पर ही तर्क का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। जेम्स के अनुसार धर्म व्यवहारिक है। जीवन में धर्म की आवश्यकता प्रतीत होती है। ईश्वर में विश्वास इसलिए आवश्यक है कि उससे जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। ईश्वर में विश्वास रखने से जीवन पवित्रता, त्याग और आदर्शों से ओतप्रोत रहता है। विश्व के महान संतों के जीवन से यह बात चरितार्थ होती है। अतः जिस ईश्वर के विश्वास का फल सुंदर होता है, वह असत्य कभी नहीं हो सकता। ईश्वर की अनुभूति अन्य साधारण अनुभूतियों से भिन्न होती है, अतः उसको सिद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता। ईश्वर का ज्ञान विश्वास पर निर्भर है। जेम्स कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों द्वारा कदापि नहीं सिद्ध किया जा सकता। यदि शुद्ध बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो पूर्णतया निराश होना पड़ेगा। अतः विश्वास और जीवन में उपयोगिता के कारण ही फलवादी दार्शनिक ईश्वर को स्वीकार करते हैं। पृष्ठ संख्या 199, शीर्षक है आलोचना। फलवादी तर्क निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धार्मिक भावना सदैव उपयोगी होती है। फलवादियों का ऐसा मानना मिथ्या प्रतीत होता है। धर्म के नाम पर तो कितने युद्ध और अत्याचार देखे जाते हैं, फिर यह कैसे उपयोगी है? दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाए कि ईश्वर में विश्वास जीवन में उपयोगी होता है, तो इसके आधार पर ईश्वर का अस्तित्व कहाँ सिद्ध होता है? तीसरे, फलवादियों की यह मान्यता है कि जो विश्वास जीवन में उपयोगी सिद्ध हो वही सत्य है, अन्य विचारकों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वे तो यही मानते हैं कि जो सत्य है वही उपयोगी है। अब अगला शीर्षक है चौथा, मूल्यात्मक तर्क। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव में मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति की एक सहज पिपासा रहती है। मनुष्य की तीन वृत्तियां होती हैं। पहला, विचार या थिंकिंग, अनुभूति या फीलिंग, और कृति या विलिंग। विचार का आदर्श सत्य, अनुभूति का सुंदर और कृति का शिव माना जाता है। अतः सत्यम, शिवम और सुंदरम, यही तीन जीवन के चरम आदर्श हैं। इनकी वस्तुनिष्ठता और अनिवार्यता में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य को इन मूल्यों का निरंतर अनुभव होता रहता है। इन आदर्शों और मूल्यों की अनुभूति में नैतिक अनुभूति की तरह बाध्यता पाई जाती है। जीवन के भीषण संकटों में भी मनुष्य इन आदर्शों की ओर अग्रसर होता रहता है। धर्म के क्षेत्र में यही परम मूल्य पूर्ण निरपेक्ष ईश्वर के रूप में माना जाता है। पेरी ने ठीक ही कहा है कि वही निरपेक्ष सत्ता विचार में सत्य, अनुभूति में सुंदर और कर्म में शिव का आदर्श है। पेरी के इस कथन से यह तो स्पष्ट होता ही है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम का चरम रूप ईश्वर है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि बिना ईश्वर के इन मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार सत्यम, शिवम, सुंदरम की अनुभूति से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इन मूल्यों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि हम एक पूर्ण सत्य, पूर्ण शिव एवं पूर्ण सुंदर के अस्तित्व को न स्वीकार कर लें। धर्म में ईश्वर ही निरपेक्ष एवं पूर्ण मूल्य है। अतः जिस प्रकार नैतिकता की व्याख्या ईश्वर के अभाव में संभव नहीं, उसी प्रकार मूल्यों की व्याख्या ईश्वर के बिना संभव नहीं कही जा सकती। अतः मूल्य के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। शीर्षक है समीक्षा। इसमें संदेह नहीं कि मूल्यों के अभाव में मानव जीवन चलना संभव नहीं है, क्योंकि आदर्श विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, और यदि आदर्शों का ईश्वर से कोई संबंध नहीं माना जाता तो भी आदर्श के मार्ग पर चलने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर भी यदि दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ दार्शनिकों का कहना है कि मूल्यों का संबंध पारमार्थिक जगत से नहीं बल्कि व्यवहारिक जगत से है। स्पिनोजा तथा ब्रैडले और भारतीय मत में शंकर का कहना है कि सत्ता निर्विशेष चैतन्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि चरम सत्ता मूल्य विहीन है। ऐसी सत्ता में ज्ञाता, ज्ञेय, कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्य की अवधारणा नहीं हो सकती। फिर मूल्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि मूल्य वस्तु परक है। सत्ता में विषय तथा विषयी का अंतर नहीं है, फिर उसमें मूल्य कैसे हो सकते हैं? पृष्ठ संख्या 200। शीर्षक है पांचवा, धार्मिक चेतना संबंधी तर्क। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अनुभूत मूलक प्रमाणों में धार्मिक चेतना संबंधी प्रमाण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए तर्कों की सहायता नहीं लेता। उसके अनुसार संतों या धार्मिक महापुरुषों की आध्यात्मिक अनुभूतियां ही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है। कहा जाता है कि संतों को ईश्वर की साक्षात अनुभूति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार सामान्य मनुष्य को लौकिक विषयों की अनुभूति होती है। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनकी ईश्वर संबंधी अनुभूति में विश्वास न किया जाए। विश्व के विभिन्न देशों और समयों में ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जो इसके साक्षात प्रमाण स्वरूप हैं। यही नहीं, ऐसे महापुरुषों की गणना धर्म के इतिहास में ईश्वर अवतार, रहस्यवादी अथवा पैगंबर तक में की जाती है, और इन्होंने अविनाशी काल पर अपना अमिट छाप छोड़ा है। इन रहस्यवादियों से संबंधित विपुल साहित्य भी उपलब्ध है, तथा धर्म दर्शन में इनके अनेक पोषक भी विद्यमान हैं। 20वीं शताब्दी में इंज अंडरहिल, जोन्स, बर्गसान, जेम्स, स्टेस, प्रेट एवं थूले आदि ने रहस्यवाद की प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन विभिन्न लेखकों द्वारा यह सिद्ध होता है कि रहस्यवादी की धार्मिक अनुभूति अत्यंत प्रामाणिक होती है। इसकी अनुभूति अस्थायी और व्यापक होती है। अगला शीर्षक है समीक्षा। यद्यपि रहस्यवादियों की आध्यात्मिक अनुभूति का प्रमाण की दृष्टि से अत्यंत महत्व है, फिर भी रहस्यवाद की अनेक तीव्र आलोचनाएं की जाती हैं। विस्तृत रूप में इन आलोचनाओं को हम रहस्यवाद के मूल्यांकन नामक शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ धार्मिक अनुभूतियों की प्रामाणिकता के विरुद्ध मूल रूप से दो आक्षेपों पर दृष्टिपात करेंगे। इनमें पहला बिंदु है, बुद्धि से अनुभव की सत्यता सिद्ध नहीं होती। रहस्यवादी को जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उनमें विश्वास किया जा सकता है और यह भी माना जा सकता है कि उनके अनुभव यथार्थ रूप में ही चित्रित किए जाते हैं, परंतु यह कैसे कहा जाए कि उनके अनुभव प्रामाणिक और सत्य होते हैं। देखा जाता है कि नशे में भी व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव होते हैं और वह उनका सही चित्रण भी करता है, परंतु उन अनुभवों को सत्य तो नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि रहस्यवादी का अनुभव समाज और देश के लिए उपयोगी हो तथा स्वयं उनके लिए आनंदप्रद भी हो, परंतु उनमें सत्यता न हो। मानव बुद्धि से जब तक उस अनुभव को ग्रहण नहीं किया जा सकता तब तक उसे सत्य या प्रामाणिक कैसे कहा जा सकता है। बिंदु दूसरा है, धार्मिक अनुभव व्यक्तिगत होने के कारण प्रामाणिक नहीं होते। रहस्यवादी के अनुभव एक समान न होकर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि उनके अनुभवों में समानता होती तो विश्व में अनेक धर्म न होते और ईश्वर की पूजा अनेक रूपों में न होती। इन विभिन्नताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि धार्मिक अनुभव प्रामाणिक एवं सत्य नहीं है। अगला शीर्षक है निराकरण। प्रथम आक्षेप का निराकरण यह कहकर किया जा सकता है कि धार्मिक अनुभव बुद्धि तथा तर्क की सीमा के परे होते हैं। धार्मिक अनुभव में ऐसा गुण होता है जो अपनी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध करते हैं। व्यक्ति को अनुभव होते हैं उसका प्रमाण वह स्वयं होता है। अनुभव की यह विशेषता कही जा सकती है, यदि किसी के दांत में दर्द है तो इसकी अनुभूति स्वयं व्यक्ति को होगी न कि चिकित्सक को। चिकित्सक जिस प्रकार व्यक्ति के अनुभव को मानकर उसमें विश्वास करके दवा देता है, उसी प्रकार हमें भी रहस्यवादी के धार्मिक अनुभवों में विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं करते तो अवैज्ञानिक होगा, क्योंकि विज्ञान में भी वैज्ञानिक अन्य विशेषज्ञों की बातों को मानकर चलता है। पृष्ठ संख्या 201। यदि कहा जाए कि विज्ञान के विषयों को हम चाहे जितनी बार प्रयोग करके उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं तो यही बात धर्म के क्षेत्र में भी कही जा सकती है। धर्म और आध्यात्म की प्रयोगशाला में कुछ शर्तों के साथ किया गया प्रयोग अवश्य ही प्रामाणिक सिद्ध होगा, परंतु कठिनाई यही है कि धार्मिक प्रयोग और शर्तें अत्यंत कठिन हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आत्म अनुशासन, वैराग्य, सत्यवादिता आदि आवश्यक है जो सामान्य जीवन के लिए दुर्लभ प्रतीत होता है। ऐसी दशा में हमें बुद्धि द्वारा अनुभव की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का हठ छोड़ना पड़ेगा और धार्मिक महापुरुषों की अनुभूतियों में विश्वास करना पड़ेगा। दूसरे तर्क का निराकरण इस रूप में किया जा सकता है कि धार्मिक अनुभवों की विभिन्नता का कारण सत्ता की अनंतता और असीमितता है। असीम और अनंत सत्ता का अनेक रूपों में अनुभव होता है, इसलिए उसमें विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी धार्मिक महापुरुषों का अनुभूतियों से एक सामान्य तथ्य निकाला जा सकता है, अनुभव विभिन्न रूपों में होते हुए भी एक सत्ता को तो सिद्ध करते ही हैं, इसे कौन अस्वीकार करेगा।